मेरे प्यारे नौजवान दोस्तों, आप सबको मेरा यानी डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत नमस्कार। मित्रों, आज 29 अप्रैल है और 29 अप्रैल के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में आप सबका मैं हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। तो आज की शुरुआत करता हूं मित्रों, मैं एक छोटी सी कहानी से जो मुझे बहुत अच्छी लगती है और सच पूछिए तो बहुत प्यारी भी। और ये जो कहानी है स्पेशली मेरे अपने जीवन के केंद्र में रही है, प्रेरणा के केंद्र में रही है। और मुझे याद आ रहा है कि जब शंकर दयाल शर्मा जी राष्ट्रपति थे तो उनके सामने मैंने इस कहानी को ऐसे ही बातचीत करने के दौरान थोड़ी सी रखी थी, तो उनको ये कहानी बहुत पसंद आई थी और इसी पैटर्न पर फिर उन्होंने अपने जीवन की एक छोटी सी कहानी भी सुनाई थी। तो मैं कह सकता हूँ कि यही तो नहीं लेकिन इसी तरह की एक जो दूसरी कहानी थी वह भी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। कहानी का शीर्षक आप कह सकते हैं एक पहाड़ी लड़की। ये कोई लोक कथा जैसी कहानी है, किसी राइटर की कहानी नहीं है। हुआ ये मित्रों कि जो पहाड़ पर आप गए होंगे तो पहाड़ पर जब कोई भी कोई अपने कंधों पर सामान लेकर के चलता है, पीठ पर लेकर के चलता है, कंधों पर तो वहाँ सामान लेकर के नहीं चल पाते, तो आप देखते हैं कि वो थोड़ा सा झुकना पड़ता है उसको। और इसका साइंस है, फिजिक्स है, आप जानते हैं कि वो गुरुत्वाकर्षण को बनाए रखने के लिए चढ़ने वाले को चलने वाले को थोड़ा झुक कर चलना पड़ता है। तो कोई विदेशी वहाँ आया हुआ था पर्यटन के लिए, तो उसने देखा दूर से कि एक छोटी सी बड़ी कोमल सी और कमज़ोर सी पतली दुबली प्यारी सी लड़की जिसकी उम्र मुश्किल से 14-15 साल की होगी, वो झुक करके चल रही है, मतलब एक पहाड़ी की चढ़ान होगी उसे वो चढ़ रही है। वो खड़ा होकर के उस लड़की को देखने लगा तो उसे बड़ा अटपटा सा लगा कि ये छोटी सी बेचारी लड़की और इतना झुक करके उसे चलना पड़ रहा है। खैर वो उसके लिए उतने आश्चर्य की बात नहीं थी जितनी यह थी कि जब वो लड़की उसके पास पहुंची, उस विदेशी के पास, तो उन्होंने देखा कि उस लड़की के पीठ पर कुछ रखा हुआ है। उसे देखकर जनरली वो चौंका। इनफैक्ट उसने सोचा कि ये छोटी सी लड़की और इसको फिर ये वजन लेकर के चलने की क्या जरूरत है। तो उसने उस फॉरेनर ने उस लड़की से सवाल किया कि तुमने अपने पीठ पर ये बोझ क्यों लाद रखा है। लड़की के समझ में नहीं आया, उसने पूछा कि क्या कह रहे हैं आप। फॉरेनर ने फिर से कहा कि तुमने अपने पीठ पर इतना बोझ क्यों लाद रखा है। ऐसा नहीं था, भाषा का संकट आप ये मत समझिए, आप ये मान करके चलिए कहानी है कि दो भाषा एक दूसरे की समझ रहे थे। फिर लड़की ने कहा कि मैं समझी नहीं आप क्या कह रहे हैं। अब फॉरेनर थोड़ा सा चिंतित हुआ कि अब मैं इस लड़की को कैसे समझाऊं कि मैं क्या कह रहा हूं। फिर भी उसने समझाने की कोशिश की। अब उसने लड़की की पीठ की तरफ उंगली से इशारा करके कहा कि ये तुमने बोझ क्यों लाद रखा है, ये बोझ लाद कर तुम क्यों चल रही हो। उस लड़की ने फिर चकित होते हुए कहा कि बोझ कहां है। तब फिर फॉरेनर थोड़ा सा बेचैन होने लगा, वो पास में गया और उसने जो लड़की के पीठ पर जो गोल सा एक बना हुआ था उसको उस पर हाथ रखते हुए कहा कि बोझ ये है। फिर लड़की ने कहा कि ये तो मेरा भाई है, बोझ कहाँ है। फॉरेनर की कुछ समझ में नहीं आया, आश्चर्यचकित रह गया। फिर से दोबारा उसने कहा कि ये बोझ है जो मैं कह रहा हूं। फिर से उसने उसके छोटे भाई को छू करके कहा तो लड़की चिड़चिड़ाती हुई बोली कि भैया ये मेरा भाई है, बोझ कहां है वो बताओ ना। मित्रों यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। मित्रों यही सिविल सर्विस है। अब आप देखिए कि आप वैज्ञानिक तरीके से सोचे तो उस भाई में का कुछ ना कुछ तो वजन रहा होगा, 5 किलो 7 किलो, तो साइंटिफिक टर्म में तो वो बोझ है, वेट है 5 किलो 6 किलो का। लेकिन चूंकि उस बच्ची ने उसके साथ जो 5-7 किलो का जो वजन है भाई का रिश्ता कायम कर लिया है, इसीलिए बोझ होते हुए भी वह बोझ नहीं है। मित्रों ये सबसे बड़ी बात होती है, इसी को मैं कहता हूं एहसास। सबसे बड़ी बात होती एहसास। और जब मैं शंकर दयाल शर्मा जी को जब मैंने ये कहानी बताई थी तो उन्होंने अपनी एक बहुत छोटी सी कहानी बताई सुनाई कि जब वो कैम्ब्रिज में पढ़ते थे तो जब उन लाइब्रेरी से वो किताबें निकलवा रहे थे तो बहुत सी किताबें उनके पास हो गई, तो लाइब्रेरियन ने कहा कि इसको कैसे ले जाओगे, तो बोले कि मैंने लाइब्रेरियन से कहा कि नहीं ये तो बहुत बोझ हो गया है, इसमें से मैं बाद में कुछ किताबें ले जाऊँगा। तो जब उन्होंने ये कहा कि ये बहुत बोझ हो गया है, तो उनके जो प्रोफेसर थे थोड़ी दूर पर खड़े थे, वो सुन रहे थे। तो उन्होंने कहा, बिल्कुल उन्हीं के वर्ड बता रहा हूँ, शंकर किताबें कभी बोझ नहीं हुआ करती। ये वाक्य वो बताते हैं। तो दोस्तों, सिविल सर्विस की आप तैयारी कर रहे हैं, मैं जानता हूँ कि इसकी जो परेशानियाँ हैं, क्योंकि वो मेरा भोगा हुआ सत्य है, आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें छूट जाती हैं, मनोरंजन छूट जाते हैं, दोस्त रिश्तेदार छूट जाते हैं, उत्सव ये छूट जाते हैं, हालांकि उतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रॉपर तरीके से प्रॉपर गाइडेंस के साथ तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से साइंटिफिक अप्रोच के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन चलिए, फिर भी मेहनत तो करनी ही पड़ती है। तब कुछ समय के बाद हमें ये बोझ लगने पड़ता है, हम ऊबने लगते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट और इवन फोर्थ अटेम्प्ट, अगर रिजर्वेशन में है तो इवन मोर देन फोर्थ अटेम्प्ट। अब इतने लंबी प्रक्रिया को अपना पाना और एक इसमें से एक ऐसी प्रक्रिया को पकड़ पाना कि फर्स्ट से लेकर के और थर्ड जो स्टेज है इंटरव्यू तक एक ही बार में हम सफल हो जाएं, चुनौती तो है। इस चुनौती का आप मुकाबला कैसे करेंगे? दोस्तों, मैं समझता हूं कि उसी अनुभव के आधार पर, उसी एहसास के आधार पर, जिस तरह का एहसास उस पहाड़ी लड़की ने अपने भाई जो कि बोझ भी था उसके साथ बना रखा था, अगर आप इस एहसास को बदल देंगे, सिविल सर्विस की तैयारी के साथ अपने रिलेशनशिप को चेंज कर देंगे, तो आप देखेंगे कि ये बोझ नहीं रहेगा, आपके लिए एक तरह का आनंद हो जाएगा। मित्रों, अब मैं आता हूं कल के आकाशवाणी के समाचार पर। कल के आकाशवाणी के समाचार में कोई बहुत चीज़ें नहीं हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें तो होती ही हैं। मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा, सबसे पहला एक वर्ड पर, हवाला कारोबारी, जो मोदी जी के संदर्भ में पहली जो न्यूज़ थी कि किसी को के साथ वो फोटो वगैरह जारी की गई है, तो ये इसमें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है केवल कि ये हवाला कारोबारी क्या है, ये हवाला होता क्या है, बस केवल आपको ये जानना है। ये अर्थशास्त्र का विषय है और आप देखेंगे कि सन 2013 में जो जनरल नॉलेज का थर्ड पेपर है मेंस में, उसका जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो इससे रिलेटेड है। उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि अवैध धन स्थानांतरण देश की आर्थिक प्रभुसत्ता के लिए एक गंभीर सुरक्षा जोखिम होता है, भारत के लिए इसका क्या महत्व है और इस खतरे से बचने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग पोजेस ए सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट टू ए कंट्रीज इकोनॉमिक सॉवरेंटी, व्हाट इज इट सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया एंड व्हाट स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू कंट्रोल दिस मिनेस। ये है दोस्तों। तो हवाला कारोबार क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद आपने देखा है कि मिस्र में जो सामूहिक फांसी की सजा सुनाई गई है, तो इसमें इवेंट इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए एक अच्छा अवसर है जब आप नक्शे के सामने खड़े होकर के मिस्र को देख सकते हैं कि कहां पर मिस्र है। हालांकि हमारा बिल्कुल पड़ोसी राष्ट्र नहीं है, शुरू में तो इम्पॉर्टेंट देश उस समय था जब भारत जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना भारत ने मिस्र के नेता के साथ मिलकर के की थी, लेकिन फिर भी आपको मैप में मालूम होना चाहिए। इसके बाद आप देख रहे हैं कि 3-4 दिन से प्रवर्तन निदेशालय की बात लगातार आ रही है। मैं कह रहा हूं कि इसके फंक्शन के बारे में आपको पढ़ना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आपने इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। फिर आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के संदर्भ में वो जब चुनावी बातें हो रही हैं, आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले जारी हैं, उसी के अंतर्गत धारा 370 और समान नागरिक कानून की बात आई थी। तो ये धारा 370 और ये सिविल कंडक्ट रूल क्या है, इक्वल सिविल कंडक्ट रूल क्या है, ये आपको सिविल सिटीजन जो हैं आपको मालूम होना चाहिए, इसके बारे में आप ज़रूर देख लें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है और जनरल वैसे भी ये पूछा जाता है। इसके बाद एक बात आई थी उड़ीसा में लू को लेकर के, तो लू कैसे चलती है, कितने टेम्परेचर पर लू होता है और अगर लू लगने पर इसका क्या इलाज होते हैं, थोड़ी सी एक हेल्थ सेक्टर की जानकारी आपको होनी चाहिए, एक अवसर है जब आप इसके बारे में जान सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आता हूँ अखबारों पर। तो आज के अखबारों में मुझे जो इम्पॉर्टेंट जो खबरें लग रही हैं, तो सबसे पहले मैं चर्चा करूँगा आम के ऊपर। आपने देखा है कि किस तरह से जो यूरोपीय संघ है उसने भारत से आने वाली सब्जियों पर 1 मई से प्रतिबंध लगा दिया है कि हमारी सब्जियां और आम वहां नहीं जा सकेंगे। उसका एक कारण है कि आम और सब्जियों में उनको लगता है कि इसमें कीटों की मौजूदगी है, और अगर ये कीट आम और सब्जियों के जरिए उनके देशों में पहुंच गए तो उसका इम्पैक्ट वहाँ की अपनी फसलों पर होगा। मतलब ये जो कीट हैं ये वहाँ की फसलों को, वहाँ के आम और या जो सब्जियां हैं उसको नुकसान पहुंचाएंगे। और इसमें एक आंकड़ा भी आया है कि जो अकेले जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में जो सलाद का कारोबार है, वहाँ सलाद बहुत खाया जाता है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यूरोपीय देशों में बहुत खाए जाते हैं, उसी का कारोबार सोचिए कि 3278 करोड़ रुपये है लगभग। तो ऐसी स्थिति में इतने बड़े उद्योग को नुकसान पहुँचेगा, तो इन्होंने इसको बैन किया है। अब आप देखेंगे यूरोपीय संघ के देशों ने भी यही कहा है, कृषि पैदावार को नए कीटों से खतरा पैदा हो जाएगा। देखिए ये फिनोमिना कोई एक नया फिनोमिना नहीं है, जनरली जब आप विदेश यात्राओं पर जाएंगे तो बहुत से ऐसे देश हैं कि जब आप वहां जाकर के एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो वहां आपको, जैसे आप अगर अपने यहाँ से कुछ खाना बना करके ले गए हैं, कुछ वेजिटेबल्स वगैरह हैं, तो उनको वो अंदर ले जाने नहीं देते, वो वहीं उसको फेंकवा देते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि इससे इसके जो कीटाणु होंगे, जो जीवाणु इसमें होंगे, वो यहाँ के खाद्यान्न को नुकसान पहुँचा सकते हैं। ठीक इसी तरह से देखेंगे कि कुछ देश ऐसे हैं जहाँ प्रवेश करने से पहले आपको इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, उसका कारण है कि वहाँ के जो जीवाणु हैं वो हमारे हेल्थ पर कोई नकारात्मक प्रभाव न डाल सकें। ठीक इसी तरीके से जब आप उन देशों से लौट करके आते हैं, कुछ देशों से, तब आपको कुछ समय तक अलग रखा जाता है और फिर से इंजेक्शन लगाया जाता है कि उनके जो जीवाणु हैं वो हमारे देश में, किसी भी देश में, मतलब हमारे नहीं कि कोई भारत की बात नहीं है, वहाँ प्रवेश न कर सके। तो ये स्थितियाँ होती हैं, तो उससे बचने के लिए यूरोपीय संघ ने ये कदम उठाया है। आपको मालूम होना चाहिए कि यूरोपीय संघ क्या है, शायद उसके 28 सदस्य हैं, तो इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये जो अल्फांसो आम पर खासकर प्रतिबंध लगा है, भारत से अल्फांसो आम विदेशों में बहुत जाते हैं, तो ये एक तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए थोड़ा सेटबैक है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि भारत सरकार इस इशू पर आगे बात करेगी और ये मुद्दा थोड़ा सा बढ़ेगा। तो फिलहाल अभी ये केवल घटना के रूप में है, आगे देखिए कि ये क्या रूप लेता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, एक इम्पॉर्टेंट खबर है। इसके बाद आप देखेंगे कि दो छोटी छोटी खबरें, एक तो कल थी उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के, अभी ये शेप ले रही है, लेकिन एक स्थापित सत्य है कि जो उत्तरी कोरिया है वो अपने उसने परमाणु हथियार बना लिए हैं, और अभी वो चौथा परीक्षण करने जा रहा है। अमेरिका ने उसको रोका है कि आप ये चौथा परीक्षण न करें। तो उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में लगातार एक दुश्मनी का भाव बना हुआ है। तो अभी जब ओबामा जी दक्षिण कोरिया गए थे तो उत्तरी कोरिया ने कुछ थ्रेट किया, वहाँ ओबामा जी ने कुछ कह दिया उत्तरी कोरिया के बारे में, तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन यहाँ इम्पॉर्टेंट केवल आपके लिए ये जानना है कि उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया, देखिए इंटरनेशनल रिलेशनशिप को जब आप पढ़ेंगे तो दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, नंबर एक। नंबर दो, उसका मुख्य कारण है कि उत्तरी कोरिया एक तरह से परमाणु से अस्त्रों से संपन्न राष्ट्र है, जिससे पूरे विश्व की शांति को एक खतरा महसूस होता है, और अमेरिका इस मायने में उत्तरी कोरिया का विरोध कर रहा है और वो दक्षिण कोरिया के साथ है। बस केवल ये आपको एक इंटरनेशनल जो सिचुएशन है उसमें इस घटना को देखना है। ठीक इसी तरह से आप देख रहे हैं कि यूक्रेन में धीरे धीरे एक आंतरिक कलह की स्थिति, गृह युद्ध की स्थिति हो गई है। आपको मालूम है कि किस तरह से यूक्रेन के कुछ एक नगर ने संसद वहां की पारित करके और रशिया में मिला लिया गया है, और उसको लेकर के कोल्ड वार जैसी स्थिति बन गई है। रशिया और अमेरिका के बीच में एक तरह से तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। अमेरिका रूस पर अनेक तरह के प्रतिबंध भी लगा रहा है, लेकिन रशिया ने झुकने से साफ साफ इनकार कर दिया है। तो इसको केवल वाच करते रहिए, देखिए कि ये क्या रूप लेता है, क्या स्थिति बनती है। खबरों में दोस्तों यही मुख्य बातें हैं। अब मैं आता हूँ एडिटोरियल आर्टिकल्स और एडिटोरियल कमेंट्स पर। आज के बिजनेस भास्कर में एक जो एडिटोरियल आर्टिकल है वो है सुस्त अर्थव्यवस्था और बोझ बने PSU। PSU मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट, जिसको हम जो सरकारी उद्योग कहते हैं। सुषमा रामचंद्रन जी का ये लेख है, इसको आप पूरा पढ़िए। तो फर्स्ट हाफ तो अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप तो जब पढ़ेंगे तो आपको पूरा ही पढ़ना चाहिए। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट दो पॉइंट है मैं आपको बताना चाहूँगा, और मेरा मकसद इसके पीछे यही है कि किस तरह से आप एक बड़े से आर्टिकल में से अपने काम की चीज़ निकालेंगे। इसमें इन्होंने कहा है कि 260 सार्वजनिक उपक्रम हैं, जिसमें से हमारे 64 जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है वो घाटे में चल रहे हैं। ये मालूम हो रहा है 260 में से 64 घाटे में चल रहे हैं। देखिए ये जो 260 का आंकड़ा है ना, कभी कभी आपको कुछ अखबारों में, मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है शायद मैंने इससे पहले 263 कहीं पढ़ा था, तो ये थोड़ा बहुत होता रहता है। इसमें से इन्होंने जो नुकसान वाले जो पब्लिक सेक्टर यूनिट बताए हैं वो आपके दिमाग में होने चाहिए, आपकी जानकारी में। एयर इंडिया, HMT, नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स, हिंदुस्तान शिपयार्ड, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड वगैरह शामिल हैं। तो ये आपके नाम मालूम होना चाहिए कि ये PSU हैं जो काफ़ी नुकसान में हैं। अब इन्होंने जो सुषमा रामचंद्र जी ने एनालाइज किया है कि हमारे यहाँ राजस्व घाटा बहुत है, सरकार को पैसों की ज़रूरत है, तो अब पैसा कैसे लाया जाए, सरकार क्या करे, क्योंकि सरकार को तो पैसे चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट है, सुरक्षा है, लॉ एंड ऑर्डर है, लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, इन सब के लिए पैसा चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि इसके लिए पहला उपाय तो ये है कि जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई हो रही है, मुद्रास्फीति, इसको नियंत्रण में रखना होगा और राजस्व घाटे को नियंत्रण में रखना होगा। लेकिन अब रखना होगा तो बात है एक है, लेकिन रखा जाए कैसे, ये इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने कहा है कि ये जो PSU हैं, इस PSU को डिसइन्वेस्ट किया जाए, जिसमें हम कहते हैं कि विनिवेश किया जाए। यानी कि निवेश का तो मतलब होगा कि सरकार पैसा उसमें और लगाए, विनिवेश का मतलब है कि जो पैसा लगा हुआ है उसको दूसरों को बेचे ताकि सरकार के पास पैसे आए। इसको बहुत सिंपल टर्मिनोलॉजी में कहना चाहें तो हम कह सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि इन जो हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिट हैं इनके शेयर्स बेचे जाएं, पब्लिक को बेचे जाएं। तो जो लोग शेयर्स खरीदेंगे वो फिर पैसा देंगे और उससे सरकार के पास पैसा आएगा। ये इन्होंने इसमें अपना विचार रखा है, तो ये आपको आपकी जानकारी में होना चाहिए। इसके बाद जनसत्ता है, ये 28 अप्रैल का जनसत्ता है, इसमें एक एडिटोरियल आर्टिकल है, एडिटोरियल कमेंट है। पहला कमेंट है ये कार्यकाल का सवाल। मित्रों इस पर मैं 2-3 दिन से आपसे बात कर रहा हूँ कि अभी जो हमारे न्यायमूर्ति सदाशिवम जो सेवानिवृत्त हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा था, दो बातें कही थी, एक तो कॉलेजियम सिस्टम को कंटिन्यू करना चाहिए, जो जस्टिस के चुनाव से निर्वाचन से अपॉइंटमेंट से संबंधित है, और दूसरा उन्होंने कहा था कि जो न्यायाधीश का जो टेन्योर है वो फिक्स होना चाहिए, जैसे हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी का 2 साल का टेन्योर फिक्स है, या होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2 साल का टेन्योर फिक्स है, इसी तरह से चीफ जस्टिस का भी होना चाहिए। मतलब इन्होंने दिया है कि यही सोचने की बात है कि पिछले 10 सालों में 7 मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, मतलब मुख्य न्यायाधीश का टेन्योर बहुत कम होता है। तो इन्होंने वो प्रश्न उठाया है कि उनका जो विचार था वो कितना सही है। तो इन्होंने अपना ओपिनियन दिया है कि ये सही है कि उनका भी न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं चीफ जस्टिस, उनका भी टेन्योर फिक्स होना चाहिए, क्योंकि उनको उस दौरान बहुत से काम करने होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना है, जजेस के अपॉइंटमेंट्स भी देखने हैं, जुडिशरी में सुधार भी करना है, संवैधानिक कामों को भी देखना है, जजमेंट भी देने हैं। तो अगर उनका 2 साल का टेन्योर फिक्स होगा तो कम से कम उनके दिमाग में अगर कोई जुडिशियल रिफॉर्म को लेकर के या अपने कंट्रीब्यूशन को लेकर के कोई योजना है तो उसे वो लागू कर सकेंगे। तो ये तो इसको उन्होंने एग्री किया है, तो इसको लेकर के एक एडिटोरियल कमेंट है, और मैं चाहूँगा कि इस एडिटोरियल कमेंट को अगर आप के लिए संभव हो तो आप लोग डेफिनेटली पढ़ें। अब मैं आता हूं इकोनॉमिक टाइम्स पर। इकोनॉमिक टाइम्स में दोस्तों 2 लेख हैं, दोनों इंपॉर्टेंट लेख हैं। तो पहले लेख की मैं चर्चा कर रहा हूं, ये NR नारायण मूर्ति जी का लेख है, इन्फोसिस के जो संस्थापकों में से रहे हैं, नारायण मूर्ति जी का नाम आप जानते हैं। इनका लेख है द न्यू इंडिया वी वांट, नया भारत जो हम चाहते हैं। बटने चौरेले की अब चुनाव हो रहे हैं, चुनाव होने के बाद नई सरकार आएगी, और नई सरकार से अब आप देख रहे हैं कि क्या अपेक्षाएं हैं, अखबारों में आनी शुरू हो गई हैं, जो बहुत स्वाभाविक है। आर्थिक जगत में क्या उम्मीद की जा रही है, और अलग अलग क्षेत्रों में क्या रिफॉर्म एक्सपेक्टेड है, तो लोग अपने अपने ओपिनियन दे रहे हैं। तो इसमें जो नारायण मूर्ति जी ने जो ओपिनियन दी है आप इसको पढ़ेंगे, लेकिन मैं मतलब ढेर सारी चीज़ें हैं जो रिपीट ही हैं। युवाओं को रोजगार चाहिए, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिए, जो हमारे अर्बन गवर्नेंस है, खासकर शहरी क्षेत्र हैं उनके गवर्नेंस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, सीमाओं पर शांति बनी रहे इसको इस पर जोर दिया जाना चाहिए, एजुकेशन, हेल्थ केयर, पोषण, घर आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए गरीबों के लिए। तो इस तरह के वो इशू इसमें भी दिए हुए हैं जो लगभग आप भी जानते हैं और लगातार इन बातों को रखा जाता है। लेकिन इसमें जो नारायण मूर्ति जी ने जो स्पेशली कही है, जो मैं एक आपको एक पढ़ने का ढंग बता रहा हूँ कि अगर आप इस पूरे के पूरे आर्टिकल को पढ़ेंगे तो देखिए दो तरीके, एक तो आप सारी चीज़ों को रिन्यू कर लेंगे जो आपको आपकी जानकारी में हो रिन्यू हो जाएगी, और दूसरी चीज़ें होती हैं कि आपने नया क्या ऐड किया इसको पढ़ने के बाद, आपके नॉलेज में क्या एक्सटेंशन हुआ। तो इसमें इन्होंने कहा है कि गुड गवर्नेंस जो है उसके सात मुख्य आधार होते हैं। गुड गवर्नेंस के बारे में आप देख रहे हैं कि अभी गुड गवर्नेंस की खूब बात हो रही है, तो क्या सात आधार होते हैं? इन्होंने कहा इक्विटी, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ऑनेस्टी, सेक्युलरिज्म एंड रोबस्ट कंसिस्टेंट एंड रिस्पॉन्सिव लीगल सिस्टम। ये उन्होंने सात चीज़ें बताई हैं। मेरे समझ से बहुत ही सरल शब्दावली है अंग्रेजी की, आप समझ जाएंगे। समानता, फेयरनेस का मतलब होता है न्याय जिसको कह लीजिए आप, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता, अकाउंटेबिलिटी उत्तरदायित्वता, ऑनेस्टी ईमानदारी, सेक्युलरिज्म पंथ निरपेक्षता तथा लगातार उत्तरदायित्वपूर्ण विधान। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई है। तो ये इस जो सात आधार दिए हैं ये आपको नोट कर लेने चाहिए और कर देना चाहिए अकॉर्डिंग टू एन आर नारायण मूर्ति। ये गुड गवर्नेंस की इनकी डेफिनेशन है। हाँ, इसके बाद दोस्तों दूसरा आर्टिकल है कला एस श्रीधर का, जो अंडरस्टैंडिंग अर्बन गवर्नेंस होलिस्टिकली, ये इन्होंने दिया है कि मतलब हमारा जो अर्बन गवर्नेंस है, खासकर जो शहरी क्षेत्र हैं उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए वो किस तरह की होनी चाहिए। आप देख रहे हैं मित्रों कि किस तरह से शहरीकरण की बात लगातार की जा रही है, माइग्रेशन हो रहा है गाँव से शहर की तरफ। इसमें इन्होंने ये बात भी कही है कि अब आप सोचेंगे कि रोजगार गांव में बिल्कुल उपलब्ध करा सके तो मुश्किल है, बड़े शहरों से अब आपको छोटे शहरों की तरफ ही आप जा सकते हैं क्योंकि गांव की अपनी लिमिटेशन है। अब जब अर्बनाइजेशन होता है, गांव से शहरों की तरफ माइग्रेशन होता है, तो निश्चित रूप से शहरों की समस्याएं बढ़ रही हैं, उसकी चर्चा उन्होंने की है। तो इसमें इन्होंने कहा है कि अब इसके गुड गवर्नेंस पर ध्यान देना चाहिए और गुड गवर्नेंस क्या हो सकता है वहाँ, उस पर उन्होंने अपना ये आर्टिकल लिखा है। कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे ये लगा कि जो रूरल और अर्बन लिंकेज है उसको बढ़ाया जाना चाहिए और जो नए इश्यूज जो अर्बनाइजेशन में डेवलप हो रहे हैं उनको पहले से फोर्सी करके और फिर उनको अभी से हैंडल करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से नए शहर अपकमिंग हो रहे हैं जो तेज़ी से बढ़ रहे हैं, अगर अभी से पॉलिसी बना करके उन पर ध्यान दिया गया तो ये चीज़ें अभी संभल जाएंगी। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि सन 2013 के पेपर में जो फर्स्ट पेपर जनरल स्टडीज़ का है उसका क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो शहरीकरण पर ही था। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आपकी सुविधा के लिए कि भारत में तीव्र शहरीकरण प्रक्रिया ने जिन विभिन्न सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया उनकी विवेचना कीजिए। डिस्कस द वेरियस सोशल प्रॉब्लम्स विच ओरिजिनेटेड आउट ऑफ द स्पीडी प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया इन 200 वर्ड्स। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट है और आपके सिविल सर्विस के सिलेबस में भी आप देखेंगे तो ये बहुत क्लियर कट अर्बनाइजेशन की बात कही गई है। दोस्तों इसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया का फर्स्ट एडिटोरियल कमेंट है, उसमें उन्होंने खासकर देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के कमेंट किया है और उन्होंने जो एक सजेशन दिया है कि अब क्या होना चाहिए हमारे यहाँ जो एक अर्थव्यवस्था जो की स्पीड जो कम हो गई है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि सेंटर और स्टेट दोनों मिल करके कोशिश करें कि आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र में जो बैरियर्स हैं, जो बाधाएं हैं उनको रोकें, होलसेल जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं उसमें जो मोनोपोली है उसको खत्म करने के लिए कानून बनाएं ताकि जो फूड प्राइसेस हैं वो कंट्रोल में रह सकें, और फिर जो भूमि अधिग्रहण से संबंधित कानून है, इनडायरेक्ट टैक्स से संबंधित कानून है और जो श्रम से जुड़े हुए कानून हैं उनको जो है चेंज करें, तब जाकर के देश की अर्थव्यवस्था में एक तेजी आ सकेगी। तो मित्रों ये आज के अखबारों की बात थी, अब मैं आज के ईमेल पर आता हूँ। मित्रों, आज मुझे ईमेल इसके अंतर्गत आपसे कुछ आप लोगों से कुछ बातें भी करनी है, लेकिन चलिए मैं पहले ईमेल पढ़ता हूँ। ये अरविंद गौतम है दिल्ली से, इनको अच्छा लगता है। इन्होंने कहा है कि एक्सीलेंट और लर्न मैनी थिंग्स, बहुत चीज़ें इन्होंने सीखी हैं। थैंक यू अरविंद जी। फिर हर्षित हैं, हर्षित ने स्थान नहीं लिखा है, लेकिन इन्होंने ये जरूर लिखा है कि आई हैव नो वर्ड्स, उनको बहुत पसंद आ रहा है और धन्यवाद के लिए शब्द नहीं है। थैंक यू हर्षित जी। फिर सोनिया स्वराज है जहानाबाद बिहार से, शायद कल भी आपका मेल आया था सोनिया जी। 3 दिन से ही आप सुन रही हैं, लेकिन फिर भी आप पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रही हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है और ये चीज़ धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। आपने लिखा है कि आप ग्रुप नहीं बना सकती, कोई बात नहीं। देखिए, एक चीज़ मैं बहुत क्लियर कर दूँ कि जो ग्रुप नहीं बना सकते हैं उन्हें किसी तरह ये न सोचें कि वो कोई कमी होगी उनके लिए या कंपलसरी ही है बनाना। जो बना सकते हैं वो बनाएं, और अगर नहीं बना सकते हैं तो इसकी बिल्कुल चिंता न करें, वो अपने लेवल पर अपनी तैयारी करते रहें। हाँ, ये जरूर है कि ग्रुप बनाने से एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन नहीं बनाने से कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये बात आप ध्यान में रखें तो आप बिल्कुल निश्चिंत, क्योंकि सभी नहीं बना सकते। मैं जानता हूँ कि बहुत छोटी छोटी जगहों पर लोग रह करके तैयारी कर रहे हैं और वहाँ 5 लोग मिल पाने आसान नहीं है, तो ये आप उसमें कोई वो न करें कि उसमें चिंता करें, आप अपना अपने ढंग से अपना काम करती रहें। अब जो दूसरे जो मेल हैं वो हैं, ये मेल है, मैं देखता हूँ, आशीष कुमार बाराबंकी से, इन्होंने भी कहा है कि मेरे गांव में मैं और 2 लोग ही तैयारी कर रहे हैं, यही हमारा ग्रुप है। नाम इन्होंने स्काई इज द लिमिट रखा है। कोई बात नहीं आशीष जी, बाराबंकी एक छोटी जगह हो सकती है, लेकिन कोशिश कीजिए। कोई अभी स्थायी नहीं है कि आप 2 ही लोग रहेंगे, धीरे धीरे और लोगों को पता लगेगा तो आपके ग्रुप में वो शामिल हो जाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। चलिए, धन्यवाद कि आपने ग्रुप बना लिया है। आप रजनीश हैं हिसार से, हरियाणा से, इन्होंने पूछा कि हैंडराइटिंग की कितनी इंपॉर्टेंट है। देखिए, हैंडराइटिंग की इंपॉर्टेंट इतनी है कि जो एग्जामिनर है वो आपके राइटिंग को अच्छे तरीके से समझ ले, उसको समझने में दिक्कत ना हो, बस इतनी ही। इसके बाद मैं 2 नाम के जिक्र करना चाहूँगा, एक हैं बाबू सिंह जयपुर से और दूसरे हैं प्रतिभा रेवारी से, हरियाणा में जो है। प्रतिभा जी का तो मेल पहले से भी आता रहा है, तो अब ये नाम को जाना पहचाना सा हो गया है। मैंने परसों के अपने मेल में आकाश मिसाइल्स की चर्चा की थी, और शायद टंग स्लिप या जिसकी वजह से भी वो हवा से हवा में मार करने की बात हो गई थी, लेकिन वो इन्होंने करेक्ट किया है कि वो पृथ्वी से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो थैंक यू, मुझे इस बात की बहुत खुशी है प्रतिभा जी और आकाश, कि आप लोगों ने बहुत ध्यान से डेफिनेटली इस बारे में सुना मेरी भी बात को, और आकाशवाणी के समाचार को भी और अखबार को भी। थैंक्स अलॉट कि आपने इधर ध्यान दिलाया, तो इसको ज़रा करेक्ट कर लें। फिर देवेंद्र ताम्रकर का मेल है, देवेंद्र ताम्रकर ने भी वही ग्रुप के बारे में पूछा है कि क्या हम अलग अलग शहर के स्टूडेंट्स का ग्रुप बना सकते हैं। बिल्कुल, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल बना सकते हैं। विजय भूरिया का है, इनका थैंक्स है, और आप देखिए विजय जी, अपना जगह का नाम नहीं लिखा कि कहाँ से हैं, लेकिन चूँकि आप, मुझे मालूम था आपका नाम याद है, इसीलिए आप झाबुआ से हैं, तो कोई बात नहीं, चलिए थैंक्स इसके लिए। फिर जो है मेरे पास है आनंद कपूर का मेल है, आनंद कपूर ने भी ग्रुप के बारे में बात कही है, इनके 2-3 मेल अलग अलग आए हुए हैं। कोई बात नहीं अनंत कपूर जी, मैं उत्तर दे चुका हूँ कि ग्रुप नहीं बना पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल अकेले तैयारी कीजिए इसको लेकर के, मन में बिल्कुल अन्यथा बिल्कुल भी ना लें। ये तो एक एक्टिविटीज़ कराने के लिए, एक विनीत का जो एक कमेंट आया था उससे मेरे दिमाग में योजना आई है, तो इसलिए जो भी नहीं बना सकते हैं बिल्कुल इसे अन्यथा न लें। आपने एक जो क्वेश्चन पूछा है कि मेरे दिमाग में जो क्वेश्चंस आते हैं उसको मैं कैसे समझूं कि इसमें से कौन सा वर्दी है कौन सा नहीं है, मेरा पैरामीटर क्या हो, इसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा आनंद जी, आप थोड़ा सा सुनते रहे इसी तरह से ऑडियो गाइडेंस। जब आपके अंदर डेवलप हो जाएगा, एक दृष्टि पैदा हो जाएगी IAS को जानने के बारे में, तब आप खुद ही इस बात को पकड़ लेंगे, इसका कोई बना बनाया फार्मूला बिल्कुल नहीं है। रजत का है बोलपुर वेस्ट बंगाल से, इन्होंने पूछा है कि मैं बेसिक किताबें पहले पढ़ूं या मैगजीन वगैरह पहले पढ़ूं, तो देखिए साइमल्टेनियसली चलते रहना चाहिए, आप बेसिक किताबें भी पढ़ते रहिए और मैगजीन न्यूज़ इन सबको भी आप सुनते रहिए, इसी तरह से तैयारी करते रहिए। फिर ये है असीम का, मालेर कोटला पंजाब से, उन्होंने कहा कि हम लोग केवल 2 लोग ही तैयारी कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। देखिए, मैं आपको असाइन करूँगा, ग्रुप आपको बनाना पड़ेगा, मैं ग्रुप असाइन नहीं करूंगा, मैं वर्क जरूर असाइन करूंगा और उसके बारे में मोस्ट प्रोबेबली शायद मैं कल असाइन करूं। इसके बाद है रितु अग्रवाल का, पहले भी इनका फ़ोन आया था, नागपुर से हैं, कोरिया छत्तीसगढ़ से। रितु जी आपने लिंक मांगा है, देखिए आप गूगल में चले जाइए, गूगल में जिस अखबार को भी आपको सर्च करना है, जैसे आप टाइम्स ऑफ इंडिया देखना चाहती हैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया ई पेपर, भास्कर देखना चाहती है दैनिक भास्कर ई पेपर करके आप डालेंगे तो आपको उस अखबार का लिंक आपको मिल जाएगा। इसके बाद नितेश कुमार का है, इन्होंने नेशनल पार्टी के बारे में पूछा है, अभी मैं इसको चेक नहीं कर पाया हूँ नितेश जी, नितेश मीना है ये, जैसे मुझे पता लगेगा मैं आपको चेक करके बताऊंगा। जो मैंने चर्चा की थी वो दैनिक भास्कर के संबंध में चर्चा की थी, उसमें जिन्होंने लिखा था वो चार नेशनल पार्टियों की बात कही थी, क्योंकि ये चीज़ें लगातार चेंज होती रहती हैं तो अपडेट भी होते रहना चाहिए, तो जैसे मुझे पता लग जाएगा मैं चेक कर लूँगा तब मैं आपको बताऊँगा। इसके बाद है पूछा है इन्होंने जयपुर से, मीना है बी एस मीना, इन्होंने पूछा है कि समालोचनात्मक और आलोचनात्मक में क्या फ़र्क है। मीना जी देखिए, आलोचनात्मक का मतलब है कि उसके सीधे प्लस और माइनस पॉइंट को आप रख दें, लेकिन जब समालोचनात्मक में जाते हैं तो उसके आपको डेप्थ में जाना पड़ता है। जब मतलब ये आप कह लीजिए कि आलोचनात्मक एक सुपरफिशियल तरीके की चीज़ है जिसमें दोनों पक्ष रखते हैं, लेकिन समालोचनात्मक इन डेप्थ है। आईएएस का जहां तक सिविल सर्विस में सवाल है, आप पेपर उठा के देखिए तो उसमें आलोचनात्मक शायद बहुत कम पूछा जाता है, समालोचनात्मक ज़्यादा पूछा जाता है। ऐसे टर्मिनोलॉजी के बारे में आपको जानना चाहिए, और मेरी जो अभी किताब आ रही है आप आईएएस कैसे बनेंगे, उसमें इस सारी टर्मिनोलॉजी के बारे में मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। इसके बाद जो मेल है वो ये निश्चल वर्मा का मेल है, ये इंदौर से हैं। आप बिल्कुल खुद ग्रुप आपको बनाना होगा निश्चल जी, आप इंदौर में ग्रुप बनाइए और फिर एक्टिविटीज़ में आप इसमें शामिल हो सकेंगे। एक चीज़ मैं आपको निश्चल जी बता दूं, चूँकि आप इंदौर से हैं, कि 7 तारीख को इंदौर में मेरी जो किताब आ रही है आप आईएएस कैसे बनेंगे, ये लॉन्च हो रही है इंदौर में ही, लॉन्च हो रही है 7 मई को, ये सुबह 9 बजे एक वर्कशॉप के फॉर्म में होगी, जिसमें आईएएस की तैयारी के बारे में ही डिटेल्स में चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। बुक लॉन्च करने का केवल एक ओकेज़न है, ये सुबह 9 बजे 7 मई को जाल सभागृह इंदौर में है। तो आप चाहें तो आप इस प्रोग्राम में आ सकते हैं, ग्रुप के साथ आ सकते हैं, और जब आप आएँ तो हिचके नहीं, मुझसे मिलें, अपने ग्रुप के साथ मिलें और मुझे मिल करके खुशी होगी, और दूसरों को भी इस प्रोग्राम में आने के लिए कहें, ये मेरी तरफ से आमंत्रण है। और खासकर जो लोग आ रहे हों, बेहतर होगा उसमें उन्होंने रखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन पहले से करा लें, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए कुछ देर करना नहीं है, तो उन लोगों के नाम आप मेरे पास मेल कर दें कि जो भी इस प्रोग्राम में इस आना चाहते हैं। तो ये है, आप बिल्कुल ग्रुप बनाएं, मेरी शुभकामनाएं इसके लिए आपके साथ हैं। इसके बाद अतुल का मेरे पास, अतुल शर्मा का लंबा मेल है, अतुल शर्मा शुरू से इस तरह के मेल भेजते रहे हैं, और ये उनका पहले भी आया था, ये यूपीएससी में जो इंटरव्यू चल रहे हैं वहाँ गए थे और उन्होंने एक रिपोर्ट बना करके भेजी है, तो मैं जल्दी से आपको ये पढ़ देता हूँ। उन्होंने कहा है कि क्वेश्चंस का कोई सेट पैटर्न नहीं होता है, अलग अलग स्टूडेंट से अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये होता भी है। देखिए, हम क्वेश्चंस केवल जानते हैं, स्टूडेंट के बैकग्राउंड नहीं जानते, जबकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्टूडेंट के बैकग्राउंड के हिसाब से पूछे जाते हैं। आप इस चीज़ को हमेशा याद रखिए, आपके लोकल एरिया से क्वेश्चंस पूछे गए, जो प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर में जो नौकरी कर रहे थे उनके अपने एक्सपीरियंस के बारे में पूछे गए, बहुत से प्रॉब्लम्स रखे गए, जैसे इलेक्ट्रॉल फॉर्म है, टेक्निकल नॉलेज है, कि टेक्निकल नॉलेज का सामाजिक समस्याओं के निदान में कितना उपयोग हो सकता है, इनके बारे में क्वेश्चंस पूछे गए। तो इन्होंने लिखा है कि क्वेश्चंस के बारे में प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है, यूपीएससी के क्वेश्चंस के बारे में। मैं आपको बताऊं अतुल जी, ऐसा बिल्कुल नहीं प्रेडिक्ट किया जा सकता है, लेकिन वो इंडिविजुअली होगा, धीरे धीरे आप समझेंगे कि कैसे प्रेडिक्ट किया जा सकता है। लेकिन ये बात आपने 100% बिल्कुल सही लिखी है कि आई थिंक द क्रक्स लाइज, मैं समझता हूँ कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इंटरव्यू में वो है उनके कॉन्फिडेंस उनमें कितना है स्टूडेंट में, और अपने उनका जो करेक्टर की जो एक स्ट्रेंथ है और जो उत्साह है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। फिर आपने अतुल जी ये भी लिखा है कि आप ग्रुप शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल आप शुरू कीजिए, मेरे पास नाम भेज दीजिए और जैसे ही थोड़े से एक दो ग्रुप और हो जाएंगे उसके बाद हम ये ग्रुप की एक्टिविटीज शुरू कर देंगे। दोस्तों ये ईमेल के बारे में था। अब मैं थोड़े से चीज़ें चर्चा करना चाहूँगा। पहला तो ये है कि ग्रुप के नाम आप लोग के पास तरफ से आ रहे हैं, मैंने ये सोचा है कि इनमें एक रूपता बनाए रखने के लिए सभी अपने अपने ग्रुप का नाम ये रखें तो बेहतर होगा। ग्रुप ऑफ एक्सीलेंस, ग्रुप फॉर एक्सीलेंस, नॉट ऑफ, ग्रुप फॉर एक्सीलेंस। और उनमें फिर हम नंबर देंगे, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3। तो जहां भी आप जाएंगे एक दूसरे को परिचय देंगे तो पता लग जाएगा कि यहाँ आपसे भी रिलेटेड कोई ग्रुप है। जैसे मान लीजिए दिल्ली का कोई लड़का इंदौर आ रहा है तो उसको मालूम है कि यहाँ एक्सीलेंस का ग्रुप है। अलग अलग नाम रहेंगे तो वो पता नहीं लगेगा। तो उस दृष्टि से ग्रुप के जो नाम हैं अब इस तरह से रखे जाएंगे, मैं समझता हूँ ये बेहतर होगा। दोस्तों तीन पॉइंट मुझे आज आपसे लोगों से स्पेशली डिस्कस करना है। 11 मार्च से मैंने ये प्रोग्राम ऑडियो गाइडेंस शुरू किया है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, मैं इसके लिए आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और इसका जो अभी मैं ऑडियो गाइडेंस दे रहा हूं उसके जो तीन स्टेप्स हैं, पहला है ओपनिंग रिमार्क्स के रूप में मोटिवेशनल होता है, फिर समाचार जिसमें आकाशवाणी और अखबार होते हैं उनका वैल्यूएशन होता है, और वैल्यूएशन और इंटरप्रिटेशन और ढेर सारी उसमें चीज़ें होती हैं, नॉलेज होता है, इंफॉर्मेशन होता है, टेक्निक होती है, और इसके बाद ईमेल होता है। ये मेरा स्ट्रक्चर है। अब जो मैं सोच रहा हूँ खासकर 1 मई से कि इसको, इस पैटर्न को मैं अब चेंज करूँ, तो मुझे आपसे केवल 3 पॉइंट पर आप लोगों के ओपिनियन चाहिए। और मैं चाहूँगा कि आज इवनिंग तक आप सभी अपने अपने विचार इसके बारे में भेज दें। मित्रों मैं खुद भी निर्णय ले सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों के आधार पर निर्णय लूं। मेरा फर्स्ट पॉइंट है कि मैं न्यूज़पेपर के इस तरह के रिव्यू को बंद करके अब दूसरे चीजों के बारे में बात करूं। ये आपको कितना एक्सेप्टेबल है या इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट वाइज आप लोग लिखिएगा। दूसरा यह है कि मैं इसके लिए मेरा जो टाइमिंग है, शुरुआत मैंने 15-20 मिनट से की थी लेकिन अब वो 30 मिनट से भी आगे टाइम हो रहा है। मुझे शायद ये लगता है कि 30 मिनट तक लगातार सुनना शायद आप लोगों को कुछ भारी पड़ता होगा। मैं इसको रिड्यूस करना चाह रहा हूं और 20 मिनट के आसपास लाना चाह रहा हूं। इसके बारे में आप लोगों की ओपिनियन क्या है, क्योंकि आप इसको सुन रहे हैं तो आप कितना ग्रहण कर पा रहे हैं, आपकी एक्सेप्टेबिलिटी कितनी लंबी है, तो ये मैं चाह रहा हूं। तीसरी यह है कि चूंकि मुझे बोलना बहुत ज्यादा पड़ता है, मेरे पास कहने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आपने देखा होगा कि मेरी स्पीड काफी होती है बोलने की, तो मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको दूं लेकिन मेरी स्पीड के कारण आपकी चीजें, आपकी पकड़ में वो चीजें ना आ पाए तो उसका कोई अर्थ नहीं है। तो यदि आपको लगता है कि मैं स्लो बोलूं तो आप मुझे इस बारे में भी बताएं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 3 पॉइंट हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों से ओपिनियन चाहता हूं। नंबर 1, न्यूज़पेपर को स्टॉप करना है या इसको किस रूप में लेना है आप बताएं। दूसरा, 30 मिनट्स का जो टाइम है इसको रिड्यूस करें आप बताएं। स्पीड है जो मेरी बोलने की उसको क्या करें आप बताएं। और खासकर मेरे बहुत से ऐसे श्रोता हैं जो लंबे समय से मुझे सुन रहे हैं और लगातार वो एक्शन में भी हैं, ईमेल वगैरह आते रहते हैं, तो मैं आप सबसे उम्मीद करूंगा कि इसके बारे में आप सब जरूर अपने अपनी राय दें। तो मित्रों इसी के साथ ही मैं अपनी आज की बात खत्म करता हूँ, आज टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। आप सबका दिन शुभ हो, नमस्कार।